हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 33। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। नमो नमस्ते स्त्रीषभाय सात्वताम् विदूरकाष्ठाय मुहु कुयोगिनाम् नीरस्तसाम्या तिशये नराधसा स्वधामनि ब्राह्मणीरं स्यते नमः। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सत्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। किरातहूणा द्रपुलिन्दपुल्कषा आभीरशुम्भा यवनाखसादया हीनी च पापा यदपा श्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्वे नमः। प्रचोदिताये न पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुरभूत् किलास्यत समीरिषीणां ऋषभप्रसीदताम् भूतैर्महद्भिर्य इमां पुरो विभु निर्मायशीति यदमोषु पुरुष भुङ्क्ते गुणांशो दशषोडशात्मक सोलङ्कृषीष्ट भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय विधसे प्रपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखं रुहासवं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। दूसरा स्कंद अध्याय 9 जिसका शीर्षक है श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों का उत्तर। आज भगवान अपने विषय में बहुत कुछ बताने वाले हैं। भगवान के मुख से निकले हुए इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए।
अहमेवास्मिवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहम् यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहम् यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत्परम्। पश्चादहं यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्।
अहम् मन मे भगवान् एव मन निश्चय ही आसम अर्थात था एव यानी केवल अग्रे मन सृष्टि के पहले। नान्यत् यत् सदसत्परम्, नान्यत् मन कभी नहीं, अन्यत् मन कुछ, अन्य कुछ, यत् जो, सत् असत्, सत् मन कार्य, असत् मन कारण, परम यानी परम। पश्चात अहम्, पश्चात मन अंत में, अहम यानी मैं भगवान, यत् ये सब, एतत् सृष्टि, च यानी भी यह प्रत्येक वस्तु, अविश्येत बचा रहता है, स वह, अस्मि अहम्, अस्मि मना हूँ, अहम् मना मैं। भगवान ब्रह्मा को बता रहे हैं अहमेवासमेवाग्रे यानी अग्रे यानी जब सृष्टि की सृष्टि नहीं हुई थी, सृष्टि से पहले तब भी मैं था। यत् सदा सत्परम यानी कि मेरे अतिरिक्त और कुछ भी ना कोई कारण है ना कारण स्वरूप, मैं ही सब था। पश्चात हम यदि तेज तच्च यानी कि जब सृष्टि खत्म हो जाएगी, जब प्रलय हो जाएगा, तब भी मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं बचेगा, तभी भी खाली मैं शेष रह जाऊंगा। अनुवाद देखिए, हे ब्रह्मा, वह मैं ही हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था, जब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, तब इस सृष्टि की कारण स्वरूपा भौतिक प्रकृति भी नहीं थी, जिसे तुम अब देख रहे हो, वह भी मैं ही हूँ, और प्रलय के बाद जो शेष रहेगा वह भी मैं ही हूँ। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो कुछ भी है वो भगवान के द्वारा भगवान से ही प्रकट हुआ है, क्योंकि सृष्टि से पहले और कुछ नहीं था, केवल भगवान थे, ब्रह्मा भी नहीं थे, और जब प्रलय हो जाएगा तब भी कुछ नहीं रहेगा, केवल भगवान बचेंगे। ये जो सेंटर में यानी सृष्टि के होने और प्रलय होने के बीच में भगवान अपने आप को एक्सपोज करते हैं और इस भौतिक जगत का निर्माण होता है और अंत में फिर प्रलय हो जाता है। तो श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से इस श्लोक को समझाएंगे। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं हमें ध्यान देना होगा कि ब्रह्मा को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संबोधित कर रहे हैं और पूरे जोर शब्दों में स्वयं स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं ही वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था, मैं ही सृष्टि का पालन करता हूँ और प्रलय के पश्चात मैं ही बचा रहता हूँ। ब्रह्मा भी इन्हीं परमेश्वर की सृष्टि है। निर्विशेषवादी तादात्म्य का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि ब्रह्मा भगवान के समरूप हैं, क्योंकि वे भी परम सत्य मैं से उद्भूत मैं हैं। अतः जैसा कि श्लोक में वर्णित है मैं के अतिरिक्त और कुछ नहीं, निर्विशेषवादियों के तर्क को मानते हुए यह स्वीकार करना होगा कि भगवान सृष्टा यानी मैं है और ब्रह्मा सृष्ट यानी मैं है। अतः इन दोनों मैं के बीच अंतर है। अधिष्ठाता मैं तथा अधीन मैं, अतः निर्विशेषवादियों के तर्क को मान लेने पर भी दो में रहते हैं, किंतु हमें यह ध्यान देना होगा कि वैदिक साहित्य कठोपनिषद में ये दो मैं गुण के अर्थ में स्वीकृत है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि चाहे कोई कुछ भी बोले, निर्विशेषवादी भले तादात्म्य की बात बोले या ये बोले कि ब्रह्मा भी परम सत्य है तो ब्रह्मा भी भगवान के समरूप है, लेकिन यहाँ से भगवान बता रहे हैं कि सृष्टि से पहले खाली मैं था, और कोई नहीं था और भगवान ने इस सृष्टि, तब तो कारण स्वरूप ये प्रकृति ही नहीं थी, भौतिक जगत नहीं था, ब्रह्मलोक नहीं था, वो सब ब्रह्मलोक तक भगवान ने स्वयं प्रकट किया, तो फिर उसमें जो ब्रह्मा जी है वो भी, तो कोई भगवान के समान कैसे हो सकता है? जो कुछ यदि उत्पन्न हुआ है वो भगवान के द्वारा हुआ है, तो वो क्या है? वो सृष्टि है, और भगवान क्या है? सृष्टा है। यहाँ कठोपनिषद के बहुत ही सुंदर शब्दों से श्रील प्रभुपाद जी इस बात को समझा रहे हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुना यो विदधाति कामान। वेदों में, सृष्टा में तथा सृष्ट में दोनों ही गुणात्मिक रूप से एक हैं, क्योंकि ये दोनों ही नित्य और चेतन हैं। किंतु एक का वचन में सृष्टा में है और सृष्ट में बहुवचन में है, क्योंकि ब्रह्मा तथा उनके द्वारा सृजित अनेक में है, यही सामान्य सत्य है। पिता से पहले एक पुत्र उत्पन्न होता है, इस पुत्र से कई पुत्र उत्पन्न होते हैं, और वे सभी मानव प्राणी के रूप में एक हैं, किंतु पुत्र तथा पौत्र पिता से भिन्न भी हैं। पुत्र पिता का स्थान नहीं ग्रहण कर सकता और ना पौत्र ही। इस प्रकार पिता, पुत्र तथा पौत्र एक होते हुए भी पृथक हैं। इसलिए सृष्टा तथा सृष्ट का आपेक्षिक अंतर वेदों में यह कहकर किया गया है कि आदिष्ठाता में आधीनस्थ में का पोषक है, और इस प्रकार दोनों में के बीच व्यापक अंतर है। तो श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत सुंदर बता रहे कि भगवान की सृष्टि और भगवान में गुणात्मिक रूप से एक ही है, क्योंकि क्वालिटीज वही है ना। भगवान भी सच्चिदानंद है, और भगवान के द्वारा जो आत्मा प्रकट होती है वो भी सच्चिदानंदमय है, तो उनके अंदर गुणात्मक वही गुण है, परंतु क्वांटिटी का फर्क है। और भगवान तो वैसे सृष्टा है, बाकी सब सृष्टि है। जैसे दादा का बेटा होता है, उसका पोता होता है, फिर उसके कितनी संतान होते तो सब मनुष्य है ना, मनुष्य रूप में तो उसके अंदर वही क्वालिटी है, मनुष्य जैसे दिखते हैं, लेकिन फिर भी पुत्र तथा पौत्र पिता से अलग होते हैं। मतलब इस प्रकार पिता, पुत्र तथा पौत्र एक होते हुए भी पृथक हैं, भले वो एक जैसे मनुष्य हैं, लेकिन उनका एक अलग अलग स्टेज है कि अधिष्ठाता में और अधीनस्थ में का पोषक है, यानी कि जो अधिष्ठाता है, जिसने बनाया है, वो अधीनस्थ यानी जिसको बनाया है उसको पालन करने वाला है, तो इन दोनों में अंतर है। आगे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस श्लोक की दूसरी विशेषता यह है कि भगवान तथा ब्रह्मा दोनों के व्यक्तित्वों को नकारा नहीं जा सकता, फलतः अधिष्ठाता और अधीनस्थ अंततोगत्वा दोनों ही व्यक्ति है। इससे निर्विशेषवादियों के इस मत का खंडन हो जाता है कि अंततः प्रत्येक वस्तु निराकार है। अल्पज्ञ निर्विशेषवादियों द्वारा बहुसमर्थन निर्विशेष रूप का खंडन इसलिए हो जाता है कि प्रधान में यानी परम सत्य है और वह व्यक्ति है। ब्रह्मा जो अधीनस्थ में है वह भी व्यक्ति है, किंतु भगवान नहीं है। आध्यात्मिक मनोविज्ञान स्व का बोध अपने आप को परम सत्य मानने में भले ही सुविधा प्रदान करने वाला हो, किंतु प्रधान तथा आश्रित में अंतर तो सदैव रहता है, जिसकी ओर इस श्लोक में स्पष्टतः इंगित है और जिसका निर्विशेषवादी अत्यधिक दुरुपयोग करते हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस श्लोक में बताया गया, भगवान ने कहा पहले मैं था, फिर मैंने इस सृष्टि का प्रारंभ किया, तो जो पहले था और जो जिसका प्रारंभ हुआ दोनों का एक अस्तित्व है। ऐसा भगवान ने नहीं कहा के उसके बाद सब मेरे अंदर लीन हो जाएंगे। प्रलय के बाद सब भगवान बन जाएंगे, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भले ही के आध्यात्मिक मनोविज्ञान स्व का बोध अपने आप को परम सत्य मानने में भले ही सुविधा प्रदान करने वाला हो, किंतु प्रदान तथा आश्रित में अंतर सदैव रहता है कि प्रलय होने के बाद सब भगवान नहीं बन जाएंगे, जिसकी ओर इस श्लोक में स्पष्टता इंगित है और जिसका निर्विशेषवादी अत्यधिक दुरुपयोग करते हैं। ब्रह्मा अपने समक्ष अपने अधिष्ठाता स्वामी को देख रहे हैं, जो सृष्टि के प्रलय के बाद भी दिव्य रूप में विद्यमान रहते हैं। ब्रह्मा ने जिस रूप का दर्शन किया वह सृष्टि के पहले भी विद्यमान था। संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वह भी भगवान की शक्ति का विस्तार है, और भगवान की शक्ति के प्रदर्शन के अंत में जो कुछ बचता है वह भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी इसी बात को वापस से बता रहे कि सृष्टि के पहले केवल भगवान थे, संसार में जो कुछ अभी दिख रहा है वह भी भगवान की शक्ति का विस्तार है, और भगवान की शक्ति के प्रदर्शन के अंत में जो कुछ बचता है वह भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अतः भगवान का रूप, सृष्टि, पालन तथा संहार इन सभी परिस्थितियों में बना रहता है। चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे संहार हो, सृष्टि हो, पालन हो, भगवान तो विद्यमान रहते हैं। वैदिक स्तोत्रों में इस कथन की पुष्टि हुई है, वासुदेवो वा इदम् अग्र आसीन ब्रह्मा न च शंकर एको नारायण आसीन न ब्रह्मा नेशान आदि। यानी वासुदेव वा इदम् अग्र आसीन, वासुदेव तो सृष्टि के पूर्व भी थे, और न ब्रह्मा न शंकर एको नारायण आसीन, न ब्रह्मण था, न ब्रह्मा था, न शंकर था, केवल नारायण थी, और न तो ब्रह्मा थे। यहाँ बता रहे हैं अनुवाद देखिए कि सृष्टि के पूर्व वासुदेव के अतिरिक्त कुछ नहीं था, न तो ब्रह्मा थे न शंकर थे, केवल नारायण थे, कोई दूसरा नहीं, न ब्रह्मा न ईशान। श्रीपाल शंकर आचार्य भी श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य में इसकी पुष्टि की है कि नारायण समस्त सृष्टि के परे हैं और समग्र सृष्टि अव्यक्त का फल है। अतः सृष्टा तथा सृष्टि में सदैव अंतर रहता है, भले ही वे दोनों एक समान गुण वाले क्यों ना हो। तो ये सब श्रील प्रभुपाद जी इतना बल दे के बता रहे हैं इसलिए कि भगवान ने ये सृष्टि की है। कुछ लोग बोलते हैं ये सृष्टि किसने की है, अकस्मात हो गई, कोई बस बिग बैंग हो गया और नहीं, हमारा शास्त्र बता रहा है कि भगवान ने ये सृष्टि अपने अंदर से की है, खुद से पहले कुछ भी नहीं था। भगवान कहते हैं सृष्टि के प्रारंभ में था और फिर मैंने सृष्टि का सृजन किया और अंत में केवल मैं बचूंगा। तो सृष्टा तथा सृष्टि सदैव अंतर रहता, वो एक नहीं है, वो हमेशा अलग रहते हैं। इस कथन की तीसरी विशेषता यह है कि भगवान परम सत्य हैं। श्री भगवान तथा उनके धाम की पहले ही व्याख्या की जा चुकी है। भगवान का धाम शून्य यानी रिक्त नहीं है, जैसा कि निर्विशेषवादी बताते हैं। वैकुंठ लोक विविधता से पूर्ण है, उसमें चार भुजाओं वाले निवासी भी हैं, जिनके पास विपुल वैभव है, और महापुरुषों के पास विमान तथा अन्य सुविधाजनक साधन तक उपलब्ध हैं। अतः श्री भगवान सृष्टि के पूर्व भी स्थित रहते हैं और वे वैकुंठ लोक में समस्त दिव्य विविधाओं के साथ रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी इन वैकुंठ लोकों को सनातन बताया गया है। ये इस विश्व के संहार के पश्चात भी नष्ट नहीं होते हैं। ये दिव्य लोक पूरी तरह से भिन्न प्रकृति के हैं। उन पर सृष्टि, पालन तथा संहार के नियम लागू नहीं होते हैं। भगवान के अस्तित्व से वैकुंठ लोकों का अस्तित्व सिद्ध होता है, जिस प्रकार राजा से राज्य का अस्तित्व सिद्ध होता है। श्रीमद् भागवतम तथा अन्य शास्त्रों में विभिन्न स्थलों पर भगवान के अस्तित्व का उल्लेख मिलता है। उदाहरणार्थ श्रीमद् भागवतम 2.8.10 में महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं, सचापि यत्र पुरुषो विश्वस्थित युद्भवाप्यय मुक्त्वात्ममायां मायीश शेते सर्वगुहाशय। अर्थात जो भगवान सृष्टि पालन तथा संहार के कारण स्वरूप है, जो माया के प्रभाव से सदैव मुक्त रहते हैं और उसके नियंता हैं, वे किस प्रकार प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थित रहते हैं। इसी प्रकार विदुर जी का भी प्रश्न है, तत्वानां भगवंस्तेषां कतिदा प्रतिसंक्रम तत्रेमं का उपासीरन का उस्वीदरुन नुशेरते। 3.7.37 श्रीधर स्वामी ने आपकी ने अपनी टिप्पणियों में इसकी व्याख्या इस प्रकार की है, सृष्टि के प्रलय के समय शेषाई भगवान की सेवा कौन करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान अपने नाम यश गुण तथा सामग्री सहित शाश्वत रूप से विद्यमान है। इसी की पुष्टि स्कंद पुराण के काशी खंड में ध्रुव चरित्र के प्रसंग में भी हुई है, न शव्यन्तेऽपि यद्भक्ता महत्यं प्रलयावधि अतोच्युतोऽखिले लोके स एक सर्वगोव्ययः। भगवान की बात तो और, यहाँ तक कि भगवान के भक्तों का भी संसार के पूर्ण प्रलय के समय विनष्ट नहीं होता। भगवान परिवर्तन की तीनों अवस्थाओं में सर्वदा विद्यमान रहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, निर्विशेषवादी परमेश्वर पर कर्म रहित होने के आरोप लगाते हैं, किंतु ब्रह्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इस वार्ता में भगवान को रूप तथा गुण से युक्त होने के साथ साथ कर्मों से युक्त बताया गया है। सृष्टि के पालन के समय ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के कार्यों को भी भगवान के ही कार्य समझना होगा, भले ही राजा या राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष सरकारी कार्यकलापों में दिखाई ना दे और वह राजसी विलास में लगा हो, तो भी यह समझा जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह उसी के निर्देशन तथा आदेश के अनुसार हो रहा है। तो यहाँ जैसे निर्विशेषवादी बोलते हैं कि भगवान कोई कार्य नहीं करते हैं, लेकिन भगवान ने कहा कि मैं ही पालन करता हूँ, अर्थात भगवान के जितने भी कार्य करने वाले कार्यकारी हैं, वो सब भगवान के आदेशों के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। राजा को स्वयं तो कुछ नहीं करना पड़ता, सब कुछ करते तो उसके जो अधिकारी होते वो तो राजा के निर्देशन के आदेश के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। तो भगवान कभी भी रूप विहीन नहीं होते, भौतिक जगत में वह अल्पज्ञों को भले ही साकार रूप में ना दिखे जिससे उसे रूप विहीन कह लिया जाए, किंतु वे अपने दाम वैकुंठ लोक में तथा अपने विभिन्न अवतारों में अन्य विभिन्न लोकों में नित्य रूप से सदैव रहते हैं। इस प्रसंग में सूर्य का उदाहरण अत्यंत ही उपयुक्त होता है। रात्रि के समय भले ही मनुष्यों को अंधेरे में सूर्य ना दिखे, किंतु जब सूर्य उदय हो जाता है तो वह दिखता है। यदि पृथ्वी के किसी एक भूभाग पर सूर्य दृष्टिगोचर नहीं होता है तो इसका अर्थ ये तो नहीं है कि सूर्य का कोई रूप है ही नहीं। तो भगवान भले हमें नहीं दिख रहे होते, लेकिन भगवान असंख्य लोकों में कहीं न कहीं कोई न कोई लीला नित्य कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान का कोई अस्तित्व समाप्त हो जाता, भगवान सदैव रहते हैं। आगे कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद 1.4.1 में एक मंत्र है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें बताया गया है आत्मै वेदं अग्र आसीत् पुरुषविदा, जिससे पुरुष अवतार के भी पूर्व पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की उपस्थिति सूचित होती है कि पुरुष अवतार जो नारायण अवतार है कारण दक्षाई गर्भ दक्षाई और क्षीरोदक्षाई से उससे भी पूर्व भगवान कृष्ण थे। श्रीमद् भगवत गीता 15.18 में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है क्योंकि वे परम पुरुष हैं, पुरुष अक्षर तथा पुरुष अक्षर से भी परे हैं। अक्षर पुरुष या महाविष्णु प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं किंतु पुरुषोत्तम तो उनसे भी पहले से विद्यमान थे। अतः बृहदारण्यक उपनिषद से श्रीमद् भगवत गीता के इस कथन की पुष्टि होती है कि श्री कृष्ण ही परम पुरुष पुरुषोत्तम हैं। कुछ वेदों में यह भी कहा गया है कि प्रारंभ में केवल निर्गुण ब्रह्म था किंतु इस श्लोक के अनुसार निर्गुण ब्रह्म को जो परमेश्वर के रूप की समसमाधि दीप्ति है कारण स्वरूप कहा जा सकता है क्योंकि समस्त कारणों के कारण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान का निर्गुण रूप भौतिक जगत में इसीलिए विद्यमान है क्योंकि भौतिक नेत्रों या इंद्रियों से भगवान को देखा नहीं जा सकता। भगवान का दर्शन करने की आशा से पूर्व इंद्रियों को आध्यात्मिक यानी दिव्य बनाना होगा किंतु वे सदैव साकार रूप में रहते हैं और वैकुंठ लोक के वासियों का को साक्षात दिखते हैं। अतः वे राज्य के उस कार्यकारी अध्यक्ष की भांति भौतिक दृष्टि से निराकार रहते हैं जो राजभवन में निराकार नहीं रहता। इसी प्रकार भगवान भी अपने धाम में निराकार नहीं रहते, उनका धाम तो निरस्त कुहकम है जैसा कि भागवत के प्रारंभ में ही कहा गया है। अतः जैसा कि शास्त्रों में प्रकट है भगवान के साकार तथा निराकार दोनों रूप ही गुह्य हैं। श्रीमद् भगवत गीता 14.27 में भगवान के इस रूप को जोर देकर इस प्रकार वर्णित किया गया है, ब्रह्मण्यो हि प्रतिष्ठाहम्। इस प्रकार सभी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान का गुह्य अंश भगवान का साक्षात्कार है, उनका निराकार ब्रह्म रूप नहीं है। अतः मनुष्य का लक्ष्य परम सत्य के इसी साकार रूप का साक्षात्कार है न कि निराकार रूप का। परम सत्य की विश्व चेतना को समझने हेतु जिज्ञासु के लिए घट के भीतर तथा घट के बाहर आकाश का दृष्टांत उपयोगी हो सकता है किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि झूठे दावे से भगवान का अंश परब्रह्म हो सकता है। इसका अर्थ यही होता है कि बद्ध जीव माया जाल के अंतिम भाव का शिकार बन चुका है। भगवान की विश्व चेतना के साथ तदात्म्य का दावा करना दैवी माया द्वारा तैयार किया गया अंतिम फंदा होता है। भगवान के निराकार होने पर भी मनुष्य को भौतिक सृष्टि की भांति साकार रूप के साक्षात्कार की आकांक्षा रखनी चाहिए और पश्चादहम यद एतच्च यो विशिष्येत सो स्मिन् अहम् का यही भावार्थ है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि भगवान कभी निराकार नहीं होते। एक जगह पर राजा यदि दुनिया राज्य में तो राजा का राज है, पूरी राज्य में वो फैला हुआ, लेकिन वो निराकार है, लेकिन अपने घर में तो वो है ना, नित्य अपने घर में रहता। उसी तरह से पूरा संसार भगवान ने बनाया है, निराकार रूप से कण कण में भगवान विद्यमान है, लेकिन भगवान अपने वास्तविक स्वरूप में अपने साकार रूप में अपने धाम में सदैव रहते हैं। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ये माया का अंतिम पाश है। जब जीव भगवान को निराकार समझकर निराकार में तदात्मय होने का सोचता है, वो सोचता है कि ये मुझे भगवान बनना, उनके अंदर समा जाना है, तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान की विश्व चेतना के साथ तदात्मय का दावा करना दैवी माया द्वारा तैयार किया गया अंतिम फंदा है। भगवान के निराकार होने पर भी मनुष्य को भौतिक सृष्टि की भांति साकार रूप में साक्षात्कार की आकांक्षा रखनी चाहिए। जब जब कुछ नहीं रहता है तब भी भगवान रहते हैं ना, तभी बताया पश्चादाम यतत एतत, कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब भी मैं रहूंगा, यानी कि भगवान उस समय भी साकार स्वरूप में होते हैं। नारद को उपदेश देते समय ब्रह्मा जी ने भी इस सत्य को स्वीकार किया था। भागवत 2.7.50 में कहते हैं, सोयम ते बिहितास्तात भगवान विश्वभावत, के भगवान वो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के अतिरिक्त समस्त कारणों के कारण कोई अन्य नहीं है। सोयम ते हितास्तात भगवान विश्वभावन, कि संसार को पैदा करने वाले, सृष्टि करने वाले, सृजन करने वाले, संहार करने वाले वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अतः अहम एव इत्यादि श्लोक परमेश्वर के अतिरिक्त और कुछ सूचित नहीं करता। अतः मनुष्य को ब्रह्म संप्रदाय अर्थात ब्रह्मा से नारद फिर व्यास इत्यादि का अनुसरण करना चाहिए और श्री भगवान हरि या श्री कृष्ण को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। शुद्ध भक्तों को दिया गया यह परम गुह्य उपदेश अर्जुन को तथा सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा को भी दिया गया था। निसंदेह ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इंद्र चंद्र वरुण इत्यादि देवता विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए भगवान के ही विभिन्न रूप हैं। सृष्टि के विभिन्न अव्यय व अनेक शक्तियां भी उसी भगवान की हैं, किंतु इन सबों के मूल श्री भगवान श्री कृष्ण हैं। मनुष्य को चाहिए कि शाखाओं तथा पत्तियों से मोहग्रस्त न होकर मूल को ही ग्रहण करे, यही इस श्लोक की शिक्षा है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य को अंत करते हुए बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि मनुष्य को क्या चाहिए, कि जो मूल है, भले ही संसार को चलाने के लिए भगवान ने विभिन्न शक्तियों के रूप में ब्रह्मा विष्णु इंद्र महेश चंद्र वरुण इत्यादि सब भगवान ने अपनी शक्तियों से उत्पन्न किए हैं, भगवान के ही विभिन्न रूप हैं, सृष्टि के विभिन्न अव्यय जो कुछ भी है वो अनेक शक्तियां भी भगवान की ही हैं, लेकिन इन सबों के मूल तो भगवान से कृष्ण है। तो बुद्धिमान वही है जो वृक्ष की शाखाओं पत्तियों टहनियों में मोहग्रस्त न होकर वृक्ष की जल को ग्रहण करता है, जल को सींचता है, तो पूरा वृक्ष हरा भरा होगा। तो वास्तव में भक्तों ये सबसे बड़ा बुद्धिमान, भगवान कहते हैं भवनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, हम बहुत भाग्यवान हैं। ये सब बातें श्री प्रभुपाद जी ने बहुत समझाने के लिए लिखी, ये उनके लिए लिखी गई हैं जो कृष्ण को मूल नहीं मानते हैं, तो उनको अलग अलग उदाहरण देकर कृष्ण को, कृष्ण ही भगवान है उसको समझाने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। लेकिन हम जो कि शुरू से श्री प्रभुपाद जी की कृपा से इस बात को समझ चुके हैं कि कृष्ण ही भगवान है और कृष्ण के अतिरिक्त और कोई भगवान हो ही नहीं सकता, कृष्ण मूल सत्ता है, तो हमें केवल कृष्ण की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो केवल कृष्ण की भक्ति ही हमारे जीवन को वास्तविक लक्ष्य की ओर लेके जा सकती है। भक्ति अव्यभिचारिणी होनी चाहिए, यानी भक्ति के अंदर मिलावट नहीं होनी चाहिए। केवल कृष्ण की भक्ति करके ही हम अपने कृष्ण लोक को वापस प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपने हृदय में आदर सबका होना चाहिए, जो भी भगवान की सृष्टि है। भगवान का भक्त तो किसी पशु का भी निरादर नहीं करता, तो देवी देवता ब्रह्मा विष्णु इंद्र ये सब तो महान है, लेकिन इतना तो बुद्धिमानी होनी चाहिए कि मेरा लक्ष्य मेरा प्रीतम तो कृष्ण है, भले सब महान है लेकिन मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो मैं जिस पर आश्रित हूँ, मैं जिनसे प्रेम करती हूँ वो तो कृष्ण ही है। तो ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की कि ये बात हमको समझानी नहीं है, हमको समझ में आ गई है। अब उसी बात को आगे लेते हुए हमको उस भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए, उनके पवित्र नाम का जप करना चाहिए और इसी से हमारा जीवन सफल हो सकता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।